लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण में तीसरे अध्याय में युवाओं पर डिजिटल वातावरण के प्रभाव का जिक्र किया। आज हम प्रवासियों पर अपनी चर्चा करेंगे जो हमारे लिए समय के प्रतीक हैं। हम उन युवाओं को कैसे भूल सकते हैं जो प्रवासन के शिकार हैं? प्रवासन एक वैश्विक संरचनात्मक घटना है, न कि आपातकालीन उत्पन्न हुई एक स्थिति। यह एक देश के अंदर या विभिन्न देशों के बीच की घटना हो सकती है। कलिसिया विशेष रूप से उन घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है जहां लोग युद्ध, हिंसा, राजनीतिक या धार्मिक प्रताड़ना के कारण, प्राकृतिक आपदाओं, जहां हम जलवायु में परिवर्तन और अत्यधिक गरीबी के कारणों को पाते हैं। इसके शिकार बहुत से युवा हैं। सामान्य रूप से वे अपने लिए और अपने परिवारों के लिए अवसरों की खोज कर रहे हैं। वे अपने में एक उज्जवल भविष्य की कामना करती और वे उसके लिए एक स्थिति की खोज करते हैं जिससे वे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकें। प्रवासी हमारे लिए विश्वास के उस मूलभूत तथ्य की याद दिलाते हैं जहां हम अपने को इस पृथ्वी पर अजनबी और प्रवासी स्वरूप पाते हैं। दूसरे प्रवासी हैं जो अपने को पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित पाते हैं, जो अपने में बहुत बार अवास्तविक उम्मीदों को प्रकट करती है जो उनके बीच बड़ी निराशाओं का कारण बनती है। नैतिकहीन सौदागर जो बहुत बार मादक पदार्थों या हथियारों के उत्पादक संघ प्रवासियों की कमजोरियों का दुरुपयोग करते हैं, जिन्हें अपनी यात्रा में कई बार हिंसा, देह व्यापार, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण के साथ और भी कई तरह की मुसीबतों का शिकार होना पड़ता है। हम उन सभी संवेदनशील प्रवासियों का, विशेषकर जो नाबालिग हैं या जिन्हें शरणार्थी शिविरों में रहने को बाध्य होना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने गुणों का विकास करने या अपने अध्ययन को जारी रखने से वंचित रह जाते हैं, चिंता करने की जरूरत है। कुछ आतिथ्य देशों में प्रवासियों को भय और धमकियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत बार राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु धमकाया और प्रताड़ित किया जाता है। यह अपरिचितों से भय की मानसिकता उत्पन्न करती है जहां हम लोगों को केवल अपने में ही सीमित या बंद होता हुआ पाते हैं और इसके लिए हमें निर्णायक रूप में संबोधन करने की आवश्यकता है। युवा प्रवासीगण अपने को अपनी जर जमीर से विखंडित पाते हैं और इस तरह वे अपने को अपनी संस्कृति और धार्मिक जड़ों से भी उखड़ता हुआ महसूस करते हैं। इस भांति अपने को अपने लोगों से दूर रखने की स्थिति में समुदायों में एक तरह का टूटापन आता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने में जोश और उत्साह की कमी का एहसास करते हैं। और ऐसा तब होता है जब माता पिता में से एक या दोनों अपने में प्रवासन का शिकार होते और अपने बच्चों को अपनी जन्मभूमि में ही छोड़ देते हैं। ऐसे युवाओं के संदर्भ में जहां वे अपने को अपने परिवारों से बिछोड़ते पाते हैं, कलिसिया की एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे उनकी देखरेख करने में सहयोग करें। इन सारी चीजों के बावजूद प्रवासियों की कहानी व्यक्तिगत और संस्कृतियों के बीच मिलन की कहानियाँ बनती हैं। वे जिन समुदायों में आते, प्रवासी अपने साथ सबों के लिए एक समग्र मानवीय विकास और समृद्धि के अवसर लेकर आते हैं। इस परिदृश्य में कलिसे के द्वारा उनका स्वागत किए जाने की पहल अपने में एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि इस कार्य सहयोग द्वारा समुदायों में नए जीवन की शुरुआत होती है। धर्म सभा में धर्माधीशकों की विविध पृष्ठभूमि ने प्रवासी और प्रवासन के संबंध में कई बातों पर विचार विमर्श किया। विशेषकर वे देश जहां से लोग पलायन करते और जहां प्रवासी बनकर पहुंचते हैं। कलिसे ने इस संदर्भ में गंभीर मुद्दों पर विचार किया, जहां सदस्यों को युद्ध और सतावटों के कारण प्रवासन हेतु बाध्य होना होता है, और वे जो प्रवासियों के आने से अपने जीवन को भय की स्थिति में पाते हैं। कलिसे अपने में इन सारी परिस्थितियों को आलिंगन करते हुए प्रवासियों के संबंध में अपनी ओर से समाज में एक नई प्रेरितिक भूमिका अदा कर सकती है। यहाँ संत पापा विशेष रूप से अर्जी करते हैं कि युवा लोग उनके हाथों में ना पड़े जो उन्हें अन्य युवाओं के विरुद्ध उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में कलिसे में धर्माधीशकों, पुरोहितों, धर्म समाजों और लोक धर्मियों के द्वारा किए गए विभिन्न तरह के शोषण को लेकर आवश्यक अपील की गई है, जिससे शोषण के शिकार लोगों की आवाज सुनी जा सके। इन सारे किए गए पापों के शिकार हुए लोगों को जीवन भर विभिन्न तरह के दुखों का सामना करना होता है, जहां पश्चाताप भुक्त भोगियों का कोई उपचार नहीं करती है। ये घटनाएं पूरे मानव समाज में फैली हुई हैं, जो कलिसे को भी प्रभावित करती हैं, जिसके कारण उसके प्रेरिताई में एक गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। हमारे लिए यह एक सच्चाई है कि नाबालिगों के प्रति शारीरिक शोषण के दंश सारे समाजों और संस्कृतियों में व्यापक रूप से भरा हुआ है, विशेष रूप से परिवारों और संस्थाओं में। हम लोगों के बदले विचारों के प्रति शुक्रगुजार हैं, जिसके कारण हमें इसके विस्तार का ज्ञान मिला है। ऐसे होने के बावजूद यह समस्या यद्यपि विश्वव्यापी है और बुरी तरह सारे समाजों को प्रभावित करती है, कलिसे के अंदर इसका घटित होना इसे किसी रूप में कम भयावह नहीं बनाता है। वास्तव में लोगों के बीच न्याय संगत क्रोध हमें कलिसे के प्रति ईश्वर की नाराजगी, विश्वासघात और अपमान पर चिंतन करने को प्रेरित करता है। धर्म सभा इस संदर्भ में अपनी निष्ठा को सुदृढ़ करती और अपने में इस बात को ठोस रूप से जोर देती है कि ऐसे घटनाओं की रोकथाम हेतु कठोर कदम उठाए जाएं, विशेष रूप से कलिसे की सेवा हेतु चाह रखने वालों का चुनाव और चुने गए लोगों का प्रशिक्षण के संबंध में। यह नियमों और कार्यवाही जो जरूरी है उसके निष्पादन पर बल देती है। शोषण के कई रूप हैं: शक्ति का दुरुपयोग, अंतःकरण का दुरुपयोग, यौन और आर्थिक दुरुपयोग इत्यादि। यह स्पष्ट है कि अधिकार का उपयोग जिस रूप में किया जाता है वह इन सारे शोषणों को बढ़ावा देता है, जिसे हमें खत्म करने की जरूरत है। वहीं उत्तरदायित्वहीनता और पारदर्शिता का अभाव जो विभिन्न तरह की घटनाओं से संबंधित है, हमें उन्हें चुनौती देने की जरूरत है। दबाव बनाने की चाह, वार्ता और पारदर्शिता की कमी, दोहरे जीवन का स्वरूप, आध्यात्मिक खालीपन, मनोवैज्ञानिक कमजोरियों के कारण इस भ्रष्टाचार का फैलाव होता है। पुरोहितों के लिए याजकीयवाद एक परीक्षा बन जाती, जहां वे अपने को स्वतंत्र और उदारता में देने के बदले अपनी शक्ति की नुमाइश करने लगते हैं। इसके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वे उस समुदाय के लोग हैं जिन्हें सारे उत्तर मालूम हैं, जिन्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं या कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह ऐसी याजकीयवाद समर्पित लोगों के सम्मान का विनाश करती है, जहां वे व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता को भी खो देते हैं।
टूटा हुआ मेरा मन, प्रभु पापों से भरा है, जाओ कहाँ मेरे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है। चला हूं वो अंधेरा है, मार्ग जिसमें मैं चला हूं वो अंधेरा है, मेरे जीवन की गली में ना सवेरा है। तेरा हृदय भरा है, टूटा हुआ मेरा मन प्रभु पापों से भरा है, जाओ कहाँ मेरे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को सभी आवासहीन लोगों के लिए प्रार्थना की तथा उपदेश में सांप के प्रतीक पर चिंतन किया। संत पापा ने वैटिकन के प्रेरितिक आवास संत मार्था में 31 मार्च को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए कहा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बेघर हैं। ऐसे समय में जब सभी लोगों को घर के अंदर रहना है, समाज और लोग इस सच्चाई को महसूस कर सकें और उनकी मदद कर सकें तथा कलीसिया उनका स्वागत कर सके। उपदेश में संत पापा ने आज के दोनों पाठों पर प्रकाश डालते हुए सांप के प्रतीक पर चिंतन किया। संत पापा ने कहा, सांप निश्चय ही सहानुभूति रखने वाला जीव नहीं है, यह हमेशा बुराई से जुड़ा होता है। प्रकाशना ग्रंथ में भी सांप को एक ऐसे जीव के रूप में दर्शाया गया है जो पाप का कारण बनता है। प्रकाशना ग्रंथ में इसे पुराना सांप कहा गया है जो काटता, विष डालता, नष्ट करता और मार डालता है। इसराइली लोग लंबी यात्रा से थक गए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनके लिए भोजन और पानी नहीं है, वे मन्ना खाकर थक चुके हैं। संत पापा ने कहा, यह उनका हमेशा का गीत था, आपने हमें मारने के लिए मिस्र से निकालकर इस मरुभूमि में क्यों लाया। वे हमेशा मिस्र की याद करते थे, हम वहाँ ठीक थे, अच्छा से खाते थे, और ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि उस समय ईश्वर भी क्रोध हो गए। ईश्वर का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे जिसके काटने पर बहुत सारे लोग मर गए। उस समय सांप हमेशा बुराई का प्रतीक था। सांप को देखते हुए लोगों ने अपने पापों की याद की, अपनी गलतियों का एहसास किया और उन्होंने पश्चाताप किया। संत पापा ने कहा कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि मूसा ने सांप को डंडे पर लटकाया, कहीं यह मूर्ति पूजा तो नहीं था। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा के बदले यह एक भविष्यवाणी थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। यीशु स्वयं डंडे पर लगाए गए सांप की याद करते और इसकी तुलना अपने आप से करते हैं। इससे अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हमें यीशु की भविष्यवाणी को समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा था कि वे डंडे पर लगाए गए सांप की तरह पुराने सांप के साथ उठाए जाएंगे। भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु यही है कि यीशु स्वयं हमारे लिए पाप बन गए। उन्होंने पाप नहीं की थी किंतु अपने आप को पाप बनाया, जैसा कि संत पेत्रुस अपने पत्र में कहते हैं, उन्होंने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर लिया। अतः जब हम क्रूस पर नजर डालते हैं तब हम प्रभु की याद करें जिन्होंने दुख सहा। किंतु संत पापा ने कहा कि उस सच्चाई के केंद्र तक पहुँचने के लिए हम एक क्षण रुकें। इस तरह हम अपने आप को एक पापी महसूस करेंगे। हमने पाप किया किंतु हमारे सभी पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उस समय संहिता के पंडितों में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना थी। वे उन्हें नहीं चाहते थे, यह बात सच है, किंतु सच्चाई जो ईश्वर से आती है वह यह है कि वे हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में आए और इसके लिए वे खुद पाप बन गए। हमारा पाप वही है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तों को एक आदत बनानी चाहिए कि वे इसी आलोक में क्रूस को देखें, मुक्ति के आलोक में और उस याद के रूप में कि यीशु दुख सहने और मरने का बहाना नहीं किए, उन्होंने अकेले ही हम सभी के पापों के भार को अपने ऊपर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने पिता द्वारा भी त्याग दिए गए महसूस किया। इसको समझना आसान नहीं है और यदि हम इसकी कल्पना करें तो भी कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम केवल चिंतन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं। वैटिकन स्थित पेरितिक आवास के निवासियों की जांच की गई। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए हर प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं। संत पापा और उनके नजदीकी सहयोगियों में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। वैटिकन में कोविड-19 के 2 नए मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए जांच की पुष्टि वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने शनिवार को एक बयान जारी कर दी। ब्रूनी ने कहा कि विगत दिनों से स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस आपातकाल पर जांच की गई। जिन लोगों की जांच की गई उनमें से एक में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है वे वैटिकन सचिवालय में कार्यरत हैं एवं संत मार्था में रहते हैं। चूंकि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ रहे थे अतः उन्हें पहले से ही अलग रखा गया था। इस समय उनका स्वास्थ्य अधिक चिंताजनक नहीं है, ब्रूनी ने कहा, किंतु सावधानी बरतने के रूप में उन्हें एक रोमी अस्पताल में भर्ती किया गया है। संत मार्था एवं कार्यालय में उनके सहकर्मियों की जांच की गई जिसमें एक के अलावा वायरस और किसी दूसरे में नहीं पाया गया है। संक्रमण से बचने के लिए उत्तम स्वास्थ्य उपाय अपनाए गए हैं। संत मार्था में रहने वालों एवं वैटिकन में कार्यरत कुल 170 लोगों की जांच की गई। वैटिकन सिटी में रहने और काम करने वालों में इस समय कुल 6 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि देता हूं कि ना तो संत पापा और ना ही उनके साथ नजदीक से सहयोग करने वाले इससे संक्रमित हैं। रोम धर्म प्रांत के विकर जनरल कार्डिनल अंजेलो दी दोनातिस में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई पड़ने पर उनकी जांच की गई और उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें रोम के अगुस्तिनो जेमेले अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें बुखार है किंतु अन्य स्थितियां ठीक हैं और उन पर वायरस रोधी चिकित्सा शुरू कर दी गई है। कोविड-19 संकट पर एक दस्तावेज में जीवन के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी ने कहा है कि महामारी संस्थागत संस्कृति को प्रभावित करने हेतु मानवीय भावना के लिए एक अवसर है। जीवन के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी ने कोविड-19 आपातकाल पर एक दस्तावेज जारी किया है जिसका शीर्षक है महामारी और वैश्विक भाईचारा। दस्तावेज में विज्ञान एवं मानवतावाद के बीच संबंध का आह्वान किया गया है जो संकट में हमारे उत्तर को दिशा दे सके। दस्तावेज में कहा गया है हम अपने भाग्य के मालिक नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर हमारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हम अपने भाग्य के मालिक नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर हमारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। यह आपसी आदान प्रदान की चेतना जागृत करता है जो हमारे जीवन का आधार है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।